नमस्कार, आज हम एक बहुत ही अहम विचारणीय विषय पर बात करेंगे। पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का एक महत्वपूर्ण उद्बोधन है, युग निर्माण योजना और उसके भावी कार्यक्रम
जी।
और इसमें जो मूल सवाल उठाया गया है वो ये कि आज इंसान के पास साधन तो इतने हैं, उन्नति भी खूब की है, पर फिर भी वो दुखी क्यों है?
हाँ।
समस्याओं से घिरा क्यों है?
हाँ, ये आज के समय का शायद सबसे बड़ा प्रश्न है।
पूज्य गुरुदेव का जो विश्लेषण है वो कहता है कि सारी जड़, मतलब मनुष्य की जो भावनात्मक स्थिति है
जी,
उसका स्तर बहुत नीचे गिर गया है।
बिल्कुल, स्रोत का ये केंद्रीय विचार है। अगर भावनात्मक स्तर ठीक हो, ऊंचा हो, तो आज जो इतनी समस्याएं दिख रही है ना,
हाँ,
वो शायद रहेंगी ही नहीं।
ये एक मौलिक निदान है जिस पर ये पूरी योजना, युग निर्माण योजना आधारित है।
अच्छा, पूज्य गुरुदेव एक बड़ी दिलचस्प तुलना भी करते हैं। वो कहते हैं कि प्रकृति में दूसरे जीव जंतु देखिए,
हाँ, जिनके पास हमारी जैसी बुद्धि नहीं है वो बिना किसी खास परेशानी के जी रहे हैं, पर बुद्धि वाला मनुष्य वो दुखी है। इसका कारण क्या बताया गया है स्रोत में?
कारण वही है, मनुष्य की अपनी ही जो निम्न स्तरीय सोच है, उसकी भावनाएं, उसका देखने का नजरिया।
हाँ,
स्रोत बिल्कुल साफ कहते हैं कि सुख जो है वो सिर्फ बाहरी चीजों से, मतलब पैसे, रुपया, सुविधाओं से नहीं आता। उदाहरण दिया है प्राचीन ऋषि मुनियों का
जी।
अभाव में जीते थे, शायद कपड़े भी पूरे ना हो, झोपड़ी में रहते थे, पर वो सुखी थे, शांत थे, ज्ञानी थे।
क्यों?
क्योंकि उनका भावनात्मक स्तर वो बहुत ऊंचा था।
और इसका ठीक उल्टा उदाहरण भी है।
हाँ बिल्कुल, रावण का उदाहरण दिया है। सोचिए, सोने की लंका, इतनी संपदा, इतना बल, प्रकांड विद्वान, सब कुछ था उसके पास,
सब कुछ,
पर भावनाएं,
हाँ,
वो नीचे थी। अहंकार, वासना, उसी ने उसे डुबो दिया। वो खुद भी परेशान रहा और दूसरों के लिए भी संकट खड़ा किया।
तो ये दिखाता है कि असली समस्या बाहर नहीं, अंदर है।
सही बात, समस्या बाहरी साधनों की कमी नहीं है, बल्कि जो भी भीतरी स्थिति है उसका पतन है।
तो फिर युग निर्माण योजना का लक्ष्य सीधा इसी अंदरूनी गड़बड़ी को ठीक करना हुआ?
बिल्कुल, योजना का उद्देश्य ही यही बताया गया है, भावनात्मक नवनिर्माण, मतलब मनुष्य की सोच बदलना, भावनाएं बदलना, उसका नजरिया बदलना। श्रोत में इसके लिए ज्ञान यज्ञ या विचार क्रांति जैसे शब्द इस्तेमाल हुए हैं। पूज्य गुरुदेव मानते थे कि जब ये अंदर का बदलाव आएगा ना
जी,
तो बाहर की जो परिस्थितियां हैं वो अपने आप सुधर जाएंगी। जैसे कहा है कि खून गंदा हो तो फोड़े फुंसी तो निकलेंगे ही।
सही बात है,
इलाज फुंसी पर मरहम लगाना नहीं, इलाज खून साफ करना है।
बहुत अच्छा उदाहरण है, लेकिन सवाल ये है कि ये बदलाव, ये भावनात्मक नवनिर्माण होगा कैसे? इतने सारे लोगों की सोच बदलना, ये तो बहुत बड़ा काम लगता है।
स्रोत में धर्म मंच की बात आई है।
हाँ,
वो उस समय की परिस्थितियों को देखकर एक सोचा समझा कदम था। देखिए, भारत की ज्यादातर आबादी तब गांव में रहती थी।
जी हाँ।
और धर्म से लोगों का गहरा जुड़ाव था, तो पूज्य गुरुदेव ने धर्म की इस बड़ी ताकत को पहचाना जो शायद इस्तेमाल नहीं हो रही थी।
अच्छा।
स्रोत बताते हैं कि भारत में लाखों संत महात्मा हैं, हर गांव के पीछे औसत 8। अब सोचिए, अगर ये सब मिलकर सही दिशा में काम करें
तो बहुत कुछ हो सकता है।
शिक्षा दे सकते हैं, समाज सुधार कर सकते हैं, बुरी रीतियां मिटा सकते हैं, अपार क्षमता थी।
लेकिन क्या धर्मतंत्र वाकई ये भूमिका निभा रहा था उस समय? आम धारणा तो यही होती है कि धर्म मतलब पूजा पाठ, कर्मकांड।
नहीं, स्रोत इस पर काफी आलोचनात्मक हैं। साफ कहा गया है कि धर्मतंत्र ने अक्सर भगवान को कैसे दिखाया, जैसे कोई राजा हो, सत्ताधारी, जो बस भोग प्रसाद चढ़ाने से, आरती करने से खुश हो जाएगा। इसे स्रोत में घृणित भावना तक कहा गया है।
ओहो।
युग निर्माण योजना ने इस सोच को बदलने की कोशिश की, समझाया कि भाई ईश्वर कोई एक व्यक्ति थोड़ी है, ये जो पूरी सृष्टि है ये समष्टि, यही ईश्वर है, और अगर ईश्वर की पूजा करनी है तो इस विश्व की सेवा करो, समाज के हर प्राणी की सेवा करो।
यानी सेवा को ही धर्म का केंद्र बनाया।
बिल्कुल, सेवा ही सच्ची पूजा है।
इसका असर क्या हुआ लोगों पर? और एक और अहम मुद्दा उठता है, संसाधनों का। मंदिरों में जो इतना चढ़ावा आता है उसका क्या, स्रोत क्या कहते हैं इस बारे में?
असर तो ये हुआ कि कई लोग जो पहले सिर्फ पूजा भजन में ही लगे रहते थे, वो सेवा के कामों को भी धर्म का हिस्सा मानकर उनसे जुड़ने लगे।
अच्छा।
और संसाधनों पर, खासकर मंदिरों की आय पर, पूज्य गुरुदेव ने बहुत, मतलब साफ और तीखी बात कही है।
जैसे?
मथुरा वृंदावन के बड़े मंदिरों का उदाहरण दिया है, जैसे रंगजी मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर। बताया है कि वहां सिर्फ भोग राग, मतलब भगवान के खाने पीने, सजावट पर ही उस जमाने में लाखों रुपए महीने के खर्च होते थे, साल के कई लाख।
लाखों रुपए उस समय में?
हाँ। स्रोत कहते हैं कि इतने पैसे से तो कितने ही ऐसे विश्वविद्यालय खुल सकते हैं जो चरित्रवान, सेवाभावी नागरिक तैयार करें।
जी।
ऐसे लोग जो भारत ही नहीं, दुनिया की समस्याओं का हल निकालें, भारतीय संस्कृति का सही संदेश दें।
और इसकी तुलना भी की गई है।
हाँ, गायत्री तपोभूमि के खर्च से तुलना की है। बताया है कि तपोभूमि का उस समय सालाना खर्च करीब 24,000 रुपए था।
24,000? कहाँ लाखों और कहाँ ये?
वही तो दिखाया है कि एक बड़े मंदिर के साल भर के भोग राग के खर्च से गायत्री तपोभूमि जैसी लगभग 48 संस्थाएं चल सकती थी।
48? ये तो बहुत बड़ा अंतर है, दिखाता है कि संसाधनों का कितना गलत इस्तेमाल हो रहा था।
बिल्कुल, और ये पैसा कहाँ जा सकता था? जन कल्याण में, शिक्षा में, चरित्र निर्माण में।
तो अगर हम सार निकालें तो संदेश यही है कि हमारी जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं या समाज की समस्याएं हैं, उनका असली और टिकाऊ हल सिर्फ बाहर की व्यवस्था बदलने से नहीं आएगा।
नहीं, बिल्कुल नहीं।
जब तक इंसान अंदर से नहीं बदलेगा, उसकी सोच, उसकी भावनाएं नहीं सुधरेंगी, तब तक सच्ची शांति, सच्ची प्रगति नहीं हो सकती। युग निर्माण योजना इसी मूल बात पर आधारित है।
एकदम सही। ये समस्याओं की जड़ पर चोट करती है पत्तों पर पाली डालने की बजाय। जड़ है मनुष्य की आंतरिक स्थिति, उसकी सोच, उसकी भावनाएं।
आज की इस चर्चा से एक विचार मन में घूम रहा है जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए।
जी।
सोचिए, हमारे समाज में कितने विशाल संसाधन हैं, पैसा है, समय है, लोगों की मेहनत है, जो आज ज्यादातर पारंपरिक धार्मिक कामों या दिखावे में लग जाते हैं।
हाँ, ये तो है।
अगर इन सारे संसाधनों को सचमुच में मनुष्य का चरित्र बनाने में, ज्ञान फैलाने में और सच्ची मानव सेवा में लगाया जाए तो इस समाज का कैसा अद्भुत कायाकल्प हो सकता है, ये एक सोचने वाली बात है।